अब हम तर्क भाषा के अंतिम पड़ाव में प्रवेश करने वाले हैं। जो बड़े बड़े प्रमाण थे प्रत्यक्ष और अनुमान, उसको हम पढ़ चुके हैं। अब दो प्रमाण और बाकी है और कुछ प्रमाणों का खंडन वो भी किया जाएगा इस सेमेस्टर के सिलेबस में। तो चलते हैं। तीसरा जो प्रमाण न्याय दर्शन में स्वीकृत है, उपमान प्रमाण, उस उपमान प्रमाण के बारे में पढ़ते हैं। ग्रंथ में देखना है, अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम उपमानम। इसमें कहा गया कि अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण, वाक्यार्थ स्मरण तो आप जानते हैं, वाक्य के अर्थ का स्मरण, और सहकृतम जो है उसका मतलब होता है के द्वारा। तो वाक्यार्थ स्मरण के द्वारा अथवा वाक्यार्थ स्मरण की सहायता से, इसमें एक जो शब्द जुड़ा हुआ है अतिदेश, वो क्या है उसको समझना है। अतिदेश वाक्य कहते हैं कि अयम एतत् सदृशः, इस तरह का जो वाक्य होता है उसको अतिदेश वाक्य कहते हैं। जैसे नीली गाय जो है, नील गाय को संस्कृत में गवय कहा जाता है, और कोई व्यक्ति गवय नहीं जानता है कि गवय कैसा होता है, तो उसको समझाने के लिए कोई कहता है, जानकार व्यक्ति, कि गौरिव गवयः। क्या कहता है? गौरिव गवयः, गौह इव गवयः, अर्थात गाय की तरह ही गवय भी होता है। तो ये जो गौरिव गवयः है, यही है अतिदेश वाक्य, माने अयम एतत् सदृशः, इस तरह का जो वाक्य होता है वह हो गया अतिदेश वाक्य। और अतिदेश वाक्य का के अर्थ का स्मरण करके और उस स्मरण के द्वारा, सहकृतम माने द्वारा, गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम, गो समझते हैं ना गाय, उसका जो सादृश्य है, सादृश्य माने गो सदृश में रहने वाला जो धर्म है, उस धर्म से विशिष्ट, विशिष्ट मतलब युक्त जो पिंड है, पिंड कहते हैं कि शरीरावयव को, शरीर का जो अवयव है, या शरीर कह लीजिए, शरीर को भी पिंड कह सकते हैं। तो गो की समानता से युक्त जो शरीर का ज्ञान है, यही हुआ गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम, वह ज्ञान जो है वही उपमान कहलाता है, उपमान प्रमाण कहलाता है। तो एक बार फिर से इसका पूरा अर्थ देख लें कि अतिदेश वाक्यार्थ के स्मरण के द्वारा गो सादृश्य से युक्त जो पिंड का ज्ञान है, वह ज्ञान ही उपमान प्रमाण कहलाता है। अतिदेश वाक्य के अर्थ के स्मरण के द्वारा गो सादृश्य से युक्त पिंड का ज्ञान उपमान प्रमाण कहलाता है। अब ये स्वयं उदाहरण द्वारा इसको समझाएंगे। कहते हैं कि यथा गवयम अजानन अपि नागरिकः, जैसे गवय को अजानन माने नहीं जानते हुए भी जो नागरिक है, अर्थात नगर में रहने वाला जो व्यक्ति है, जो गवय को नहीं जानता है, वह भी यथा गौह तथा गवयः, जैसा जैसी गौ होती है उसी तरह से गवय भी होती है। इति वाक्यम कुतश्चित आरण्यक पुरुषात् श्रुत्वा, इस तरह का वाक्य जो है अतिदेश वाक्य, यथा गौह तथा गवयः, हमने जो गौरिव गवयः कहा था वही ये चीज है, हमने इव लगा करके बोला था, इन्होंने यथा तथा लगा करके बोला है। तो यथा गौह तथा गवयः, इस तरह का वाक्य जो है किसी आरण्यक पुरुष के मुंह से सुना। आरण्यक पुरुष मतलब जंगल में रहने वाला, अरण्य में रहने वाला जो पुरुष है, उस पुरुष के मुंह से इस तरह का वाक्य सुना। क्योंकि नील गाय जो होती है, गबाय जो होती है ना, वह जंगलों में ही रहती है, वह पालतू पशु नहीं है। गाय जो है वह तो पालतू पशु है, नील गाय पालतू पशु नहीं है, वो जंगल में रहती है। तो उसको जानने वाला व्यक्ति जो होगा वह भी कौन होगा, जंगली जो होगा, आरण्यक पुरुष जो होगा वही जानेगा। तो कोई नागरिक जो है जो गबाय को नहीं जानता, वह उस जंगली व्यक्ति से, उस आरण्यक पुरुष से इस अतिदेश वाक्य को सुनता है। किस अतिदेश वाक्य को? यथा गौह तथा गभय। और इस वाक्य को सुनने के बाद वनंगत वन में जाता है, और वन में जाने के बाद वाक्यार्थम स्मरण। ये जो गौ यथा गौह तथा गभय, यह जो वाक्य है, इस वाक्य के अर्थ का स्मरण करते हुए, उस वाक्यार्थ को याद करते हुए, यदा गोसादृश्य विशिष्टम पिंडम पश्यति, जब गो के सादृश्य से विशिष्ट अर्थात युक्त पिंड को, आकृति को या शरीर को पश्यति, जब देखता है, या पशु पिंड कह लीजिए, सबसे पशु शरीर कह लीजिए, हैं, तो पिंड का अर्थ कर लीजिए पशु शरीर। तो गो के सादृश्य से युक्त जब पशु पिंड को देखता है, पशु शरीर को देखता है, तदा तद वाक्यार्थ स्मरण सह कृतम, वह जो अतिदेश वाक्य था यथा गो तथा गवय, उस वाक्यार्थ के स्मरण की सहायता से गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान उसको होता है। किसको? उस नागरिक को, जो नागरिक गवय नहीं जान रहा होता है उसको, है? दो चीजें होती हैं। पहले जो है ना, वह तो अतिदेश वाक्य सुनता है, और अतिदेश वाक्य सुनने के बाद जब वह वन में जाता है और गो सादृश्य विशिष्ट जो है पशु पिंड को देखता है, तो उस समय में उसको अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण होता है, और स्मरण के द्वारा उसको गो सादृश्य से विशिष्ट पिंड का ज्ञान होता है। यह जो पिंड का ज्ञान है, गो सादृश्य विशिष्ट पिंड का ज्ञान, अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण के द्वारा यह ज्ञान ही जो है उपमानम, यही उपमान कहलाता है, माने उपमान प्रमाण कहलाता है। जैसे अनुमान प्रमाण से क्या होता था, उपमिति होती थी, ऐसे ही उपमान प्रमाण के आधार पर क्या होती है, उपमिति होती है। उपमित प्रमाकरणम प्रमाणम आप जानते हैं, तो जैसे अनुमितिकरणम उपमानम होता है, उसी तरह से उपमितिकरणम उपमानम होता है। तो यही कहते हैं कि यह जो गोसादृश्य विशिष्ट पिंड का ज्ञान है वह उपमान प्रमाण है, क्योंकि उपमितिकरणत्वात्, क्योंकि उस ज्ञान में उपमिति का करणत्व रहता है, माने उपमिति का प्रमाणत्व रहता है। फिर आगे कहते हैं कि गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान अनंतरम, जब उसको नागरिक को यह ज्ञान हो जाता है, मान उपमान हो जाता है, गो सादृश्य विशिष्ट पिंड का ज्ञान हो जाता है, तत अनंतरम उसके बाद अयम असौ गवय शब्दवाच्य पिंड, यह जो है यह जो पिंड है, या जो पशु पशु पिंड है या पशु की आकृति है, वह गवय शब्द का वाच्य है। वाच्य है मतलब अर्थ है, यह पिंड गवय शब्द का वाच्य है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसी पशु का नाम गवय है। जब अनुमान का ज्ञान होता है उसको, मतलब नागरिक को, उस ज्ञान होने के बाद उसको उपमिति होगी ना, तो उपमिति का स्वरूप कैसा होगा वो बताया जा रहा है कि अयम असो गवय शब्द वाच्य पिंड, कि यह जो पशु है यह गवय शब्द का वाच्य पिंड है, अर्थात गवय शब्द का अर्थ यही है, अथवा यही जो है, यही पशु जो है यह गवय कहलाता है। इति संज्ञा संगी संबंध प्रतीति उपमिति, इस तरह से संज्ञा और संगी का जो संबंध है उसकी प्रतीति उसको होती है, और वह प्रतीति जो है वही उपमिति कहलाती है। अब यहाँ पर प्रतीति शब्द जो आया है ना, प्रतीति का अर्थ कर लेते हैं ज्ञान, तो संज्ञा संगी संबंध का जो ज्ञान है वह ज्ञान ही उपमिति स्वरूप है। ठीक, अब ये संज्ञा संगी संबंध क्या है इसको समझते हैं। संज्ञा और संग, जैसे वृद्धिराजिच सूत्र है तो उसमें संज्ञा है वृद्धि संज्ञा, और संगी कौन है तो आत और एच जो है वह संगी है। इसी तरह से अदेंग गुणा में गुण संज्ञा है और अत एंग जो है वह संगी है, जिसकी संज्ञा की जाती है वह संगी कहलाता है और जो नाम होता है उसको हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर भी वह जो पशुपिंड है वह है संज्ञा, और पशुपिंड का जो नाम है मतलब नहीं, वह जो पशुपिंड है वह है संगी, और संज्ञा क्या है उसका तो गवय है। तो अयम इयम संज्ञा और अयम संगी, यह जो गवय है यह इसकी संज्ञा है और यह जो गोपिंद है यह संगी है। इस तरह से संज्ञा संगी के संबंध का ज्ञान जो होता है वह ज्ञान किससे होगा, प्रत्यक्ष से नहीं होगा, वह अनुमान से भी नहीं होगा, वह उपमान प्रमाण के द्वारा होगा, और इस तरह की जो प्रतीति है उसी को उपमिति कहते हैं। यहाँ पर जो संज्ञा संगी संबंध जो कहा है ना, वो वास्तव में संज्ञा संगी संबंध का तात्पर्य है कि वाच्य वाचक भाव संबंध। ये वाच्य वाचक भाव संबंध क्या होता है तो देखिए, अभिधा वृत्ति से जो अर्थ निकलता है उसको कहते हैं वाच्य, और अभिधा वृत्ति से जो अर्थ बताता है उसको कहते हैं वाचक, और वाच्य में धर्म रहता है वाच्यता, वाचक में जो धर्म रहता है उसका नाम है वाचकता। तो वाच्य वाचक भाव संबंध का मतलब हुआ वाच्यता का ज्ञान और वाचकता का ज्ञान। यहाँ पर वाच्य कौन है, पशुपिंड, वाचक कौन है, गवय, वाच्यता किसमें रहेगी, वाच्य में रहेगी माने पशुपिंड में रहेगी, वाचकता किसमें रहेगी मतलब वाचक में रहेगी, वाचक कौन है, गवय शब्द है। तो शब्द तो इस तरह से वाच्य वाचक भाव संबंध का जो ज्ञान है इसी का नाम है उपमिति। इसको आप दोनों तरीके से कह सकते हैं, संज्ञा संगी संबंध के ज्ञान का नाम है उपमिति, अथवा वाच्य वाचक भाव संबंध के ज्ञान का नाम है उपमिति। सैव फलम, वही जो है ये जो उपमिति है यही उसका फल है। किसका फल है, उपमान प्रमाण का फल है, अर्थात उपमान से होने वाला जो है ज्ञान है। तो सैव फलम इदम तो प्रत्यक्ष अनुमान असाध्य, यह जो उपमिति है यह जो फल है उपमिति रूप फल है वह प्रत्यक्ष के द्वारा असाध्य है, अनुमान के द्वारा भी असाध्य है, और प्रमा साधकत्वात्, और प्रमा का जो है साधक है, प्रमा यहाँ पर कौन है, उपमिति रूप प्रमा है, उस उपमिति प्रमा का यह जो है अनुमान प्रमाण ये साधक है, साधक है अर्थात करण है, प्रमा करणम प्रमाणम। तो प्रमा उपमिति रूप प्रमा का यह उपमान जो है साधक है अर्थात करण है, इसीलिए प्रमाणांतरम उपमानम अस्ति, इसीलिए प्रमाणांतर के रूप में यह उपमान स्वीकार किया जाता है। तो प्रमाणांतर के रूप में उपमान स्वीकार किया जाता है, ये जो इन्होंने कहा इसमें भी एक रहस्य है कि उपमान प्रमाण को सारे दर्शन वाले नहीं मानते, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन न्याय दर्शन वाले जो है ना उपमान को प्रमाण मानते हैं। तो प्रमाणांतर उपमान मानते हैं, ये प्रमाणांतर में मैंने पहले भी कभी समझाया होगा कि शब्द में अगर लास्ट में अंतर लग जाता है तो उस शब्द का अर्थ होता है अन्य, तो प्रमाणांतर का मतलब हो जाएगा अन्य प्रमाण, तो अन्य प्रमाण के रूप में उपमान माना जाता है। ये अन्य प्रमाण के रूप में माना जाने का मतलब है कि प्रत्यक्ष से अन्य, अनुमान से अन्य, शब्द प्रमाण से अन्य प्रमाण जो है उपमान प्रमाण को माना जाता है। बाकी कुछ दर्शनों में जो है ना इस उपमान प्रमाण को प्रत्यक्ष के अंतर्गत ही अंतर्भाव कर लेते हैं, माने कहते हैं कि उपमान प्रमाण मानने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष से ही काम चल जाएगा या अनुमान से ही काम चल जाएगा, अन्य प्रमाण के रूप पर रूप में उपमान को नहीं मानना चाहिए, लेकिन न्याय दर्शन वाले जो है अन्य प्रमाण के रूप में उपमान मानते हैं। अन्य माने भिन्न प्रमाण, किससे भिन्न प्रमाण, प्रत्यक्ष से भिन्न प्रमाण, अनुमान से भिन्न प्रमाण और शब्द से भिन्न प्रमाण के रूप में उपमान प्रमाण को मानते हैं। इसीलिए यहाँ पर प्रमाणांतर उपमान के रूप में यह स्वीकृत है, ऐसा इन्होंने तर्क भाषाकार केशव मिश्र ने जो है बताया। इस तरह से उपमान प्रमाण को हम लोगों ने समझा। अब जो चौथा प्रमाण है, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द, शब्द प्रमाण के बारे में जो है अब हम लोग पढ़ेंगे। और यह जो है चूंकि शब्द के से संबंधित है तो हमारे व्याकरण वालों के लिए जो है ना ये बहुत ही उपयोगी होगा, लेकिन आज का पाठ यहीं पर स्थगित करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे।